सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 31वें दिवसीय सत्र में। हम अंत्यलीला चर्चा कर रहे हैं और कल हमने अंत्यलीला का अध्याय तीसरा जिसका शीर्षक था हरिदास ठाकुर इनकी महिमा, इसका हमने वर्णन किया। सर्वप्रथम जब महाप्रभु नित्य रूप से हर रोज हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए जाया करते थे, तो जब वो गए एक दिन तो उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर से कि ये जो यवन लोग इनका उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर कहते कि वो नामाभास रूप में हाँ राम कह के नाम लेते ही है जिसकी वजह से उनका उद्धार हो जाएगा। फिर महाप्रभु बोलते कि जो स्थावर जंगल में इनका उद्धार कैसे होगा। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आपको जो उच्च कीर्तन होता है उसमें से जब वो सुनेंगे उनके उनके ऊपर पड़ेगा प्रतिध्वनि होगी तो वो उनका ही कीर्तन है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और फिर इस प्रकार से हमने कई सारे वृत्तांत देखे जिससे हरिदास ठाकुर इनकी महिमा का गान किया जा सकता है। जैसे बेनापोल में उन्होंने उस वेश्या का उद्धार किया जिसे रामचंद्र खान ने उनके व्रत को भंग करने के लिए भेजा था, और फिर उसके पश्चात रामचंद्र खान को उसकी सजा क्या भुगतनी पड़ी, उनका सारा गांव उजड़ गया, ये भी हमने देखा। और उसके पश्चात जब चांदपुर में हरिदास ठाकुर जी गए थे तब हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार इनके यहाँ पे भी उनका जो गोपाल चक्रवर्ती है वो अवमान करता है, और उसे भी जो है वो हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध के कारण उसे कुष्ठ रोग हो जाता है और उसका नाक गल जाता है, उनका वाद विवाद होता है, वो भी हमने चर्चा किया था। और किस प्रकार से जब अद्वैताचार्य इनके घर पे हरिदास ठाकुर वहां पर रुके थे तो अद्वैताचार्य ने उन्हें श्रद्धा पात्र उसका मान दिया था। और उसके पश्चात हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से उस गुफा में माया देवी स्वयं हरिदास ठाकुर इनकी परीक्षा करने के लिए वहां पर आई थी और उसे भी हरिदास ठाकुर जी ने दीक्षा दी है, तो जो माया देवी है वो हरिदास ठाकुर जी की शिष्या बन गई। हरिदास ठाकुर के बारे में उनका महिमा का गान किया ही नहीं जा सकता विस्तार से। 300,000 नाम वो रोज लिया करते थे, वेश्या को भी उन्होंने भक्त बना दिया और वो वेश्या कितनी महान भक्ति बन गई कि कितने सारे लोग उसके दर्शन के लिए आया करते थे। माया देवी को उन्होंने भक्त बनाया, इस प्रकार से कई सारे कथाएं उनके बारे में है। और यदि विस्तार से हमें जानना है तो वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत हमें पढ़ना होगा, उसमें और कई सारे जो 22 मार्केट प्लेसेस में हरिदास ठाकुर को पीटा जाना ये वृत्तांत चैतन्य चरितामृत में नहीं आता है, क्योंकि कविराज गोस्वामी ने पहले ही कहा है कि जो वृंदावन दास ठाकुर इन्होंने लिखा हुआ है उसे मैं पुनः दोहराने वाला नहीं हूं। तो वो भी एक जगह है जहां पर मतलब 22 मार्केट प्लेस में हरिदास ठाकुर इनको पीटा गया था, वो मुस्लिम शासक उन्होंने उनको बंदी बना लिया था और कहा था कि आप ये आपका जो नाम उच्चारण है उसे बंद कर दो नहीं तो हम आपके शरीर को काट देंगे, आपको पीटा जाएगा। तो इस प्रकार से 22 मार्केट प्लेसेस में उनको पीटा गया था। और हरिदास ठाकुर इनका क्या कहना था, खंड खंड हो या देह या यदि प्राण तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। जितने भागवत का श्लोक है कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन हर एक टुकड़ा बोलता रहेगा भगवान का नाम। इतनी उनकी दृढ़ श्रद्धा थी, इसीलिए नहीं चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य ये पदवी दी है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की महिमा का गान हमने कल किया था। आज हम अध्याय चौथा और एक प्रमुख अध्याय अंतलीला का, जिसमें सनातन गोस्वामी की महिमा का वर्णन होने वाला है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नीलाचल हैते रूप गौड़ेय बेगेला मथुरा हैते सनातन नीलाचले आईला। हमें पता है, हमने अंत्यलीला के पहले अध्याय में रूप गोस्वामी के बारे में सुना था। रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिलकर वो गौड़ गए थे, और जब वो गौड़ गए तो सनातन गोस्वामी मथुरा में थे, और मथुरा से सनातन गोस्वामी अभी नीलाचल आ रहे हैं। वो भी जंगल के रास्ते से, झारखंड से उसी रास्ते से आ रहे थे जहां से चैतन्य महाप्रभु आए थे। रास्ते से आते आते उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था खाने के लिए, जो भी वहां पे मिल जाता था उसे भक्षण कर लेते थे। जिस भी कुंड का जल दिख जाता था वो कुंड का जल ग्रहण कर लेते थे। कितने तो दिन उन्होंने उपवास किया, कुछ खाने को भी उन्हें नहीं मिला। इतनी उत्कंठा था महाप्रभु को मिलने की उनके हृदय में लेके वो चल रहे थे। तो यहां वहां का जल पीने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और उन्हें कंडू रस मतलब उनके शरीर में संपूर्ण फोड़े आ जाते हैं, और फोड़ों से रस जो है वैसा बाहर निकलता है। और इतनी खुजली हो रही थी कि वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे, इतना परेशानी हो गया था। ये प्रकार की बीमारी लग जाती है उनके शरीर में, और वो भी उसे ठीक से सहन नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में चलते चलते अचानक विचार आ जाता है, एक तो मैंने नीच काम किया हुआ है, नीच जाति में मेरा जन्म हुआ है, जगन्नाथपुरी में जाऊंगा जगन्नाथ जी का दर्शन तो मुझे मिलने वाला नहीं है, और सदैव तो महाप्रभु का दर्शन होने वाला नहीं है। मेरा ये शरीर इतना रोगग्रस्त हो गया है, पता नहीं ये क्या सेवा कर पाएगा। मेरे लिए अच्छा वही है कि मैं जाके किसी तीर्थ क्षेत्र में आत्महत्या कर दूं। और ऐसा विचार लेके वो जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर लेते हैं, और सोचते हैं महाप्रभु आगे आर देखी जगन्नाथ रते देह छड़ी मु ई परम पुरुषार्थ। महाप्रभु को अपने सामने मैं देखूंगा, और जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलेगी तो जगन्नाथ जी का भी दर्शन कर लूंगा, और जो रथ है उस रथ के नीचे मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगा, ये सबसे बड़ा मेरे लिए पुरुषार्थ हो जाएगा। ऐसा विचार करके सनातन गोस्वामी नीलाचल में प्रवेश करते हैं। और हमें पता है जब रूप गोस्वामी भी नीलाचल में आए थे तो सर्वप्रथम वो हरिदास ठाकुर के पास गए थे रहने के लिए, उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी भी हरिदास ठाकुर के यहाँ पर जाते हैं। हरिदास ठाकुर उनका स्वागत करते हैं, उन्हें आलिंगन करते हैं, उन्हें अच्छे से बैठने की जगह देते हैं, उनके निवास की व्यवस्था करते हैं। और सनातन गोस्वामी कहते हैं मुझे महाप्रभु से मिलना है, उत्कंठित हूँ। हरिदास कहते हैं कि रुको, महाप्रभु रोज यहाँ पर आते हैं अपना स्वयं दर्शन देने के लिए, और वो आज भी आएंगे। तो उसी प्रकार से उपल भोग देख के महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी दोनों प्रणाम करते हैं महाप्रभु को, और महाप्रभु हरिदास ठाकुर को उठा के आलिंगन करते हैं। और हरिदास कहते हैं महाप्रभु सनातन भी आपको मिलने के लिए आज आया हुआ है। और महाप्रभु देखते हैं सनातन आप आए हैं, कहते हैं महाप्रभु उनके और भागने लगते हैं। और सनातन गोस्वामी अभी पीछे पीछे हटते हैं, वो आलिंगन करने के लिए तैयार नहीं है। सनातन आलिंगिते प्रभु आगु हैला पाछे भागे सनातन कहिते लागिला। पीछे पीछे भाग रहे महाप्रभु, आगे आगे भाग रहे सनातन गोस्वामी, पीछे पीछे भाग रहे और कहते हैं कि महाप्रभु मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, स्पर्श करता हूँ, कृपया मुझे मत छुइए, मुझे मत छुइए, मुझे कंडूरस मेरे शरीर से बह रहा है, और इस ये शरीर को आप स्पर्श करेंगे तो आपका शरीर गंदा हो जाएगा, और पहले से मैं नीच जाति में जन्म लिया हूँ, कृपया कृपया मुझे आलिंगन मत कीजिए। अभी महाप्रभु क्या रुकने वाले हैं? बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन कैला कंडू क्लेद महाप्रभु श्री अंगेला गिला। जबरदस्ती से जाके महाप्रभु ने उन्हें पकड़ लिया और उनके शरीर का जो है वो आलिंगन कर लिया, और सारा जो रस था उनके शरीर पे बह रहा था कंडू रस, वो सारा महाप्रभु के श्री अंग में लग जाता है। और फिर महाप्रभु वहां पर बैठ जाते हैं और चबूतरे के ऊपर महाप्रभु अपने भक्तों के संग बैठ जाते हैं और सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर चबूतरे के नीचे बैठते हैं। महाप्रभु सब पूछते हैं, सनातन कैसे सब कुशल मंगल तो है? सनातन कहता है, महाप्रभु आपके चरण मैंने आज देख लिए है, सब कुछ कुशल ही होगा। और फिर मथुरा के वैष्णव, मथुरा से आप आए हैं, वहां की वार्ता क्या है? सनातन वहां के भी वार्ता बताता है, वहां के कुशल मंगल सुनाते हैं। और फिर सनातन इस प्रकार से वार्ता सुनाने के पश्चात महाप्रभु अभी उन्हें पूरी की वार्ता सुनाते हैं, अपने भाई की वार्ता देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ समय पहले ही तुम्हारा भाई रूप यहाँ पे आया था, 10 महीने तक यहाँ पर उसने निवास किया था, जगन्नाथ रथ यात्रा, डोल यात्रा आदि सब उन्होंने देखा है। 10 दिन पहले ही अभी यहां से वो चला गया है, गौड़ देश के लिए गमन किया है उसने। और तुम्हारा भाई जो है अनुपम, उसका देहांत हो गया है, क्योंकि सनातन गोस्वामी को पता नहीं था, वो वृंदावन में थे और वृंदावन से आए थे और गौड़ में ही उनका भाई जो अनुपम था उसका देहांत हो गया था। तो महाप्रभु उसकी भी वार्ता सनातन को सुनाते हैं। और सनातन फिर महाप्रभु से कहते हैं कि हमारे पूरे परिवार के ऊपर महाप्रभु आपने कृपा दर्शाई है। और फिर सनातन अनुपम का वृत्तांत सुनाते हैं कि किस प्रकार अनुपम जो है वो बचपन से राम भक्त था, राम का नाम का जप किया करता था और रामायण पढ़ा करता था। सनातन कहते हैं, महाप्रभु से एक दिन हमने उसे बुलाया और हमने कहा कि हम दोनों बड़े भाई रूप और सनातन इस प्रकार से कृष्ण के भक्ति में लगे हुए हैं, आप भी आ जाओ हमारे साथ, कृष्ण भक्ति में जुड़ जाओ, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण कितने मधुर है, देखो कृष्ण का ऐश्वर्य कैसा है, तीनों मिलके एकत्रित होकर कृष्ण कथा किया करेंगे। तो वो कहा कि मुझे कृष्ण नाम में दीक्षा दे दो, हमने भी उसे कृष्ण नाम दिया। दूसरे दिन रोते रोते वो हमारे पास आया और कहा कि मेरा सिर मैंने प्रभु रामचंद्र जी के प्रति अर्पण कर दिया है, अभी मैं वहां से निकाल नहीं सकता और आप दोनों की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं मेरे से हो रहा है, मैं क्या करूं बताइए। रघुनाथर पाद पद में वेचिया छे माथा, काड़ी तेना पारो माथा, पाय बड़ा व्यथा। माथा भी महाप्रभु रामचंद्र जी न हो जाता है क्योंकि मैं राम के चरणों को नहीं छोड़ पाता। और फिर हमने उसे कहा कि जो तू कर रहा है वैसा ही करते रहे, मत छोड़ राम भक्ति। और इस प्रकार से फिर महाप्रभु कहते हैं कि ऐसी परीक्षा मैंने भी की थी एक भक्त की, जानते आप किस कौन थे वो? मुरारी गुप्त। महाप्रभु कहे कि मैंने भी उसे परीक्षा की थी, मैंने भी उसे कहा था राम भक्ति छोड़ दे, कृष्ण भक्ति का स्वीकार कर, लेकिन वो जो है वो इस प्रकार से नहीं छोड़ पाया। और महाप्रभु कहते हैं, सही भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु चरण, सही प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन। भक्त धन्य है वो जो अपने स्वामी, जो अपने प्रभु के चरणों को पकड़ लेता है, उनके चरणों को नहीं छोड़ पाता, और धन्य है ऐसे प्रभु जो अपने ऐसे भक्त को, शरणागत भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। दुर्भाग्यवश ऐसा भक्त कहीं छोड़ के भागने का भी प्रयास करता है, भगवान उसे कैसे न कैसे प्रकार से योजना बना के उसे पकड़ के लेके ही आते हैं। दुर्दैव सेवक यदि याय अन्य स्थाने, सही ठाकुर धन्य तारे चूली धरियाने। दुर्दैववश यदि अन्य स्थान पर भक्त चला जाता है भगवान को छोड़ के, तो भगवान की लीला ऐसी होती है कि धन्य ठाकुर तारे चूली धरियाने, उसकी शिखा पकड़ के लेके आते हैं। इसलिए भक्तों को शिखा रखनी चाहिए कि हम यदि पथ भ्रष्ट हो जाए तो भगवान हमारी शिखा पकड़ के लेके आएंगे, जिस प्रकार से काला कृष्णदास की शिखा मध्य लीला के अध्ययनों में महाप्रभु पकड़ के लेके आए थे, भट्टा थरी से जो उन्होंने छुड़वाया था। तो इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु कहते हैं सनातन से, अच्छा हो गया आप आ गए, आप हरिदास ठाकुर के संग में रहिए और कृष्ण कथा का आस्वादन करते रहिए। ऐ मत सनातन रहे प्रभुर स्थाने, जगन्नाथेर चक्र देखी करे न प्रणामे। इस प्रकार से नीलाचल में हरिदास ठाकुर के यहाँ पर सनातन रहने लगे। जगन्नाथ मंदिर में यवनों को प्रवेश नहीं था, इसलिए हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये जब भी जाते थे उन्हें भी वहां पर प्रवेश नहीं था। केवल हरिदास ठाकुर की जो भजन कुटीर है, आज भी आप यदि वहां पर जाएंगे तो वहां पर ऊपर चढ़ के जाने के लिए रास्ता है, वहां पर यदि आते तो वहां से चक्र का दर्शन होता है। और उस समय तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, तो वहीं से वो चक्र का दर्शन करते थे, प्रणाम करते थे और वहीं पर जो है वो कुटिया में रहा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु हर रोज उपलभोग देखने के पश्चात हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए वहां पर आया करते थे और प्रसाद भी लाया करते थे जगन्नाथ जी का। एक दिन महाप्रभु के मन में कुछ हो गया और सोचे चलो सनातन से कुछ बात करते हैं। एक दिन आसी प्रभु दुहारे मिलीला सनातने आचंबिते कोहिते लागीला। एक दिन अचानक महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बात करने लगे। क्या बात करने लगे? हे सनातन, यदि आत्महत्या करने से किसी को कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है तो मैं करोड़ों बार नए शरीर लेके उनको आत्महत्या कर दूंगा और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करा दूंगा, लेकिन केवल आत्महत्या करने से भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यदि कोई करता है तो ही उसे कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। देह त्यागे कृष्ण न पाई पाइये भजने कृष्ण प्राप्तिर उपाय को नाही भक्ति विने। देह त्याग कृष्ण के प्राप्ति का उपाय नहीं है, केवल एकमात्र उपाय है, वो है कृष्ण भजन। कृष्ण प्राप्तिर उपाय को नाही भक्ति विने। भक्ति के अलावा कृष्ण को प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय जो है वो नहीं है। ये आत्महत्या करना ये सब जो है वो तमोगुण से प्रभावित उपाय है, इससे कृष्ण के चरणों में कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना भक्ति किए कृष्ण के प्रति प्रेम हृदय में उत्पन्न नहीं हो पाएगा, और जब कृष्ण के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता तब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। और श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का श्लोक महाप्रभु उद्धृत करते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, कई बार चैतन्य चरितमृत में आया है, हमने इसको श्लोक को देखा है। श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सारे वेदों का सार है श्रीमद् भागवत, और कई जगह पर चैतन्य चरितमृत में भागवत के प्रमुख श्लोकों का उच्चारण आया हुआ है। तो एक साधक को चाहिए जब वो चैतन्य चरितमृत का अध्ययन करता है तो ऐसे जो सारे श्लोक जो कई बार चैतन्य चरितमृत में उनकी पुनरावृत्ति होती है उन श्लोकों को चयन करके उन्हें अलग से लिख के रखे और उनको जो है वो आस्वादन करे। तो और ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो महाप्रभु सुनाते हैं। न साधयति माम योगो, योग के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। न सांख्यम, न सांख्य योग के द्वारा। न स्वाध्याय तपस्त्यागो, न किसी प्रकार का स्वाध्याय करके, न वेदों का पंडित बन के, न कोई तपस्या करके, न जो है वो योग अष्टांग योग का पालन करके, और न कोई तपस्या इसके द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। मुझे प्राप्त किया जा सकता है केवल यथा भक्तिर ममोर्जिता, केवल भक्ति के द्वारा ही जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि भगवान का जो उन्नत भक्त होता है वो भगवान से वियोग सहन नहीं कर पाता, लेकिन उस वियोग में भी उसे कृष्ण के दर्शन होते हैं, इसलिए वो अपने देह को जो है वो कभी त्याग नहीं करता। कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिरात पाबे तबे कृष्ण चरण। अपनी कुबुद्धि को छोड़ दो और केवल श्रवण कीर्तन करो, अचिरात जो है वो तुम्हें कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। देखो कृष्ण प्राप्ति जल्दी प्राप्त करने के कई सारे तरीके के श्लोक, कल भी हमने हरिदास ठाकुर के वृत्तांत में यह श्लोक सुना था जिसकी आखिरी पंक्ति वही थी, अचिरात पाबे तबे कृष्ण चरण, बहुत जल्दी तुम्हें कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाएगी। क्या करना है? महाप्रभु कहते हैं कुबुद्धि छड़िया करो श्रवण कीर्तन, और कल भी वही था, निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन अचिरात पाबे तबे कृष्ण चरण, वही आखिरी पंक्ति वही है, जल्दी कृष्ण के चरणों की प्रति प्राप्ति हो जाएगी। तो आज के श्लोक से क्या सीखने को मिलता है? श्रवण कीर्तन करो, कुबुद्धि छोड़ दो, आत्महत्या का विचार त्याग दो, और हरिदास ठाकुर के वृत्तांत से सुनने को मिलता है निरंतर नाम जप करते रहो और तुलसी की सेवा करो, तुलसी को जल अर्पण करो, तुलसी की आरती गाओ, तुलसी को प्रदक्षिणा करो, इससे हमें बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है। निम्न कुल में भी किसी व्यक्ति ने जन्म क्यों न लिया हो वह व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में भी जन्म क्यों न लिया हो वह व्यक्ति भक्ति के लिए योग्य है, ऐसा भी नहीं है। यही भजे सही बड़ा अभक्त ही न छार कृष्ण भक्ति नहीं जानी जाति कुलादि विचार। कृष्ण भक्ति करने के लिए जाति और कुल इसका विचार कदापि नहीं किया जाता। यही भजे सही बड़ा, जो कृष्ण की भक्ति में लग जाता है वो बड़ा है और जो अभक्त है वो हीन है। और वास्तव में देखा जाए तो जो दीनहीन है उनके ऊपर तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष दया होती है। और श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद के नौवे अध्याय का प्रहलाद महाराज द्वारा प्रार्थित ये श्लोक महाप्रभु सुनाते हैं। विप्राद्विषट गुणयुताद अरविंद नाभ पाद अरविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित वनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमान। विप्राद्विषट गुणयुताद अरविंद नाभ, जो भगवान के चरण कमलों से विमुख है, हालांकि वो विद्वत ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त क्यों न हो, लेकिन यदि भगवत भक्ति से विहीन है, और ऐसा चांडाल जिसने अपने प्राणो मनो वचने हितार्थ, अपने प्राण वचन मन बुद्धि तन मन धन से जो भगवान की सेवा में लगा है, ऐसा चांडाल श्रेष्ठ है। ऐसे ब्राह्मण की तुलना में जो भगवत भक्ति से विहीन है, ऐसा भगवत भक्ति विहीन वाला ब्राह्मण अपने स्वयं का भी उद्धार नहीं कर पाएगा, और जो ऐसा चांडाल जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो स्वयं का तो छोड़ दो, अपने सारे कुलों का उद्धार करने में समर्थ बन जाता है। इसलिए महाप्रभु आगे चल के ये श्रवण कीर्तन की विधि का और गुणगान करते हैं। अन्य कई सारे साधन है भगवान की भक्ति करने के लिए, योग मार्ग है, सांख्य योग है, कर्म योग है, ध्यान योग है, कई सारे है, लेकिन सारे साधनों में श्रेष्ठ स्थान महाप्रभु स्थापित करते हैं। साधन मध्य श्रेष्ठ नवविदा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। सारे साधनों में श्रेष्ठ है नवविदा भक्ति, और क्या प्रदान कर सकती है? कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। इतनी महान शक्ति है इन नवविदा भक्ति में, यदि कोई इसे करता है तो कृष्ण प्रेम और कृष्ण उसे बहुत जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि इन सबको भी करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो महाप्रभु और आगे जाके वदान्य अवतार वो कहते हैं, तारमदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लय ले पाय प्रेम धन। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से नाम संकीर्तन करता है, तो बहुत शीघ्र उसे भगवान के प्रति प्रेम का जो धन है वह उसे प्राप्त हो सकता है। सनातन गोस्वामी ये सब उपदेश दे रहे, सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि महाप्रभु को पता नहीं कैसे समझ में आ गया कि मेरे अंदर आत्महत्या करने का विचार था, अभी तक उन्होंने किसी को व्यक्त भी नहीं किया था। तो महाप्रभु जान गए, सनातन गोस्वामी चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं और आप जादूगर के समान हैं, जो कठपुतली है हम तो कठपुतली के समान है, आप जैसे नचाएंगे वैसे तो जो है हम नाचने वाले हैं। कितने सारे घृणित कर्म मैंने किए हुए है, कितना पापाचारी का जीवन जिया हुआ है, नीच जाति में मेरा जन्म हुआ है, मेरे शरीर में अभी इतना रोग चल रहा है, पता नहीं आप इस शरीर को लेके क्या प्रयोग करने वाले हैं, क्या लाभ होगा इस शरीर को जीवित रखे। महाप्रभु थोड़े क्रोधित होके कहते हैं, प्रभु कहे तुमार देह मोर निज धन तुम्ही मोरे करिया छे आत्मसमर्पण। अभी तुम्हारा देह जो है वो मेरा धन है, मोर निज धन मेरी संपत्ति है, तुम्ही मोरे करिया छे आत्मसमर्पण, आपने आत्मसमर्पण कर दिया है मुझे, पता नहीं क्या हो गया है, दूसरों के द्रव्य का तू विनाश कर रहा है, अभी यह शरीर तुम्हारा नहीं, यह शरीर मेरा है। तो इस प्रकार से जो भी भक्त कहते हैं कि हम इस शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करेंगे क्योंकि अभी हम भक्त हैं, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो भगवत प्राप्ति का साधन है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, हमारा जो शरीर है हमारा सबसे बड़ा धर्म जो प्रेम धन है उसे प्राप्त कराने का सर्वोत्कृष्ट साधन है, और वो अभी महाप्रभु की संपत्ति है, जब हम आत्मसमर्पण कर देते तो वो हमारा नहीं रह जाता। इसलिए इस शरीर की अच्छे से निगाह रखना, इस शरीर में जो इस शरीर के लिए अच्छे के लिए है उसी को डालना, इस शरीर का यदि कुछ क्षति या हानि पहुंचाने वाला है उस चीज को नहीं करना, ये एक भक्त का आद्य कर्तव्य है, ये महाप्रभु सनातन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। और इसके आगे महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे शरीर मोर प्रधान साधन ये शरीर साधु आमी बहु प्रयोजन। ये अभी मेरा प्रधान साधन है, आपका शरीर है सनातन, इसके द्वारा मैं बहुत प्रयोजन साध्य करने वाला हूँ। क्या कुछ मुझे नहीं करना है, मुझे भक्ति शास्त्रों का प्रचारण करना है, लुप्त तीर्थों का उद्धार प्रकटन कराना है, मुझे जो है वो वैष्णव आचार क्या होता है उसका प्रचार करना है, कई सारे शास्त्रों को लिखाना है, ये कैसे संभव है, मेरा प्रिय स्थान मेरे हृदय का है वृंदावन, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि तू वृंदावन मत जा, जगन्नाथपुरी में ही रहे, इसलिए मैं वहां पर नहीं जा पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपका प्रयोग में लाके उन सब कार्यों को सिद्ध करने वाला हूँ, और तुम जब आत्महत्या का विचार करोगे तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। सनातन थोड़ा सोचो, कितने सारे कार्यों को मैं करने जा रहा हूँ। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को प्रणाम करते है, झुकते है और कहते है कि महाप्रभु आपका हृदय बहुत गंभीर है, कौन समझ सकता है। और आप जो है वहां में कठपुतली जिस प्रकार से जब नचाई जाती है तो कठपुतली क्या नाच रही है, क्या बोल रही है, वो कठपुतली को भी समझ में नहीं आता। उसी प्रकार से आप हमसे क्या कराने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, नाच रहे, ये हमें ही समझ में नहीं आता। महाप्रभु का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। महाप्रभु हरिदास की तरफ देख के कहते, देख हरिदास, ये दूसरे की संपत्ति का विनाश करने पर तुला हुआ है, इसका शरीर नहीं, ये मेरा शरीर है। हरिदास कहते, महाप्रभु आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन आप किसके द्वारा क्या कार्य कराने वाले हैं, जब तक आप इसको उद्घाटित नहीं करेंगे, प्रकट नहीं करेंगे, तब तक कौन जो है वो इसे समझ सकता है। आपने स्वीकृति दी है सनातन को, यह आपका बड़प्पन है। और सनातन कितना भाग्यशाली है कि आप इसके शरीर के द्वारा इतने सारे कार्य करने वाले हैं। महाप्रभु दोनों को आलिंगन दे के इस प्रकार से वहां से अभी चले जाते हैं। मध्यान्ह हो जाता है और उनके मध्यान्ह दैनंदिन कार्य के लिए महाप्रभु चले जाते हैं। और अभी हरिदास ठाकुर और सनातन इनके बीच में वार्तालाप होता है। हरिदास कहते हैं कि वाह सनातन, तुम्हारे सौभाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। सनातने कहे हरिदास करियालिंगन, तुम्हारा भाग्य सीमा नायाय कथन। आलिंगन करके कहते, तुम्हारे भाग्य की तो सीमा का कथन ही नहीं किया जा सकता। महाप्रभु ने कहा है मोर निज धन, महाप्रभु आपको आपका निज धन मानते हैं, क्या आपके सौभाग्य की सीमा है। और इतने सारे साधन, महाप्रभु कहे कि उनको ये करना है, वृंदावन भेजना है, लुप्त तीर्थ स्थलों को उद्घाटन कराना है, भक्ति आचार्य भक्ति का प्रचार करना है, वैष्णव का आचार की स्थापना करना है, इतने कार्य आपसे कराना चाहते हैं, आप धन्य है सनातन, आप धन्य है। और दूसरी ओर देखो, मेरी तरफ देखो, हमारा ए देह प्रभु रा कार्य ना लागिल, भारत भूमि ते जन्मी यह देह व्यर्थ हैला। भारत भूमि में मैंने जन्म लिया हुआ है लेकिन फिर भी मेरा देह व्यर्थ है, क्योंकि महाप्रभु के कार्य में नहीं लग रहा है। और महाप्रभु आपको कह रहे हैं कि आपको अपने कार्य में लगा रहे हैं, आपके सौभाग्य की सीमा नहीं है। भारत भूमि में होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जन्म को सार्थक करे और भगवान कार्य में भगवत प्रचार में लगाए, लेकिन मैं तो जो है वो कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल यहाँ पे बैठा रहता हूँ। और आपकी भाग्य की सीमा देखो, कितने उच्च पद पर आप स्थित है। सनातन अभी देखिए, सनातन हरिदास ठाकुर से कहते है कि ठाकुर जी आप तो महाप्रभु के नित्य संगी है, आप रोज 300,000 नाम का जप करते हैं, महाप्रभु जिस कार्य को प्रदान करने के लिए आए, भगवत प्रेम और नाम के द्वारा प्रचार करना चाहते हैं, और आपको उन्होंने नामाचार्य बना के रखा है, आपसे बड़ा कोई भक्त जो है वो हो ही नहीं सकता है। इस संसार में कुछ लोग होते हैं जो केवल प्रचार करते हैं, बोलते बहुत कुछ है, बोली बच्चन बहुत कुछ बोलते है लेकिन अपने आचरण में बिल्कुल नहीं लाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आचरण कर पाते हैं लेकिन उसका प्रचार नहीं करते। लेकिन आप तो जो है जो अपने आचार के द्वारा ही प्रचार कर रहे हैं, आप आचार भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। आचार प्रचार ना मेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। आप जो है वो आप नाम का जो है वो आचरण भी करते हैं, 300,000 नाम लेकर, और उसका प्रचार भी करते हैं। आपने स्वयं के उदाहरण के द्वारा आपने उस वेश्या का उद्धार कराया, माया देवी को आपने दीक्षा दी, तो इस प्रकार से आप प्रचार कार्य में भी लगे हुए हैं। तुम्ही सर्व गुरु, आप सारे जगत के गुरु होने लायक है, और सारे जगतेर आर्य, आप सर्व जगत में जो है वो श्रेष्ठ भक्त है। इस प्रकार से सनातन और हरिदास, ये एक भक्त का स्वभाव होता है जो हमेशा दूसरों का ही गुणगान करने में व्यस्त रहता है। महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर को सनातन से कहा कि आप मेरे निज धन है, तब हरिदास ठाकुर के मन में बिल्कुल ईर्ष्या नहीं हुई और उन्होंने विपरीत सनातन का गुणगान किया और उनके मन से जो आत्महत्या का विचार था उसे निकालने के लिए कहा कि मेरे कुछ काम का नहीं हो, आपके द्वारा तो इतने अच्छे कार्य होने वाले है। और फिर सनातन ने जो है वो और अच्छे से उनका गुणगान किया। यह है एक वैष्णव सभ्यता। उसी के बीच रथ यात्रा का महोत्सव आ जाता है और रथ यात्रा के महोत्सव में हम देखते हैं कई सारे बंगाल के भक्त भी आ जाते हैं। सनातन गोस्वामी जिनको बिल्कुल दर्शन वर्जित था जगन्नाथ जी का, अभी उन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। महाप्रभु का नृत्य जगन्नाथ जी के सामने उसे देखने को मिलता है। महाप्रभु कई सारे भक्तों के साथ पहचान कराते हैं क्योंकि सनातन गोस्वामी पहली बार आ रहे हैं। महाप्रभु की पहली भेंट हुई थी सनातन गोस्वामी से रामकेली में सर्वप्रथम मध्यलीला अध्याय 16। उसके पश्चात दूसरी भेंट हुई थी वाराणसी में जब महाप्रभु वृंदावन से वापस आ रहे थे मध्यलीला अध्याय 20 और उन्हें वहां पर शिक्षा दी थी। तो सनातन गोस्वामी अभी केवल परिचित थे तपन मिश्रा, चंद्रशेखर आचार्य उन लोगों से जो वाराणसी में स्थित थे और मथुरा में कुछ लोग जो जानते थे, लेकिन बंगाल से भक्त और जगन्नाथपुरी के उड़िया के भक्त इनसे बिल्कुल अपरिचित थे। महाप्रभु सबसे परिचय कराते हैं सनातन गोस्वामी का। नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, दामोदर, मुकुंद, मुरारी सबका परिचय कराते हैं। सारे भक्तों की कृपा सनातन गोस्वामी को मिलती है और सनातन गोस्वामी यथा योग्य व्यवहार करते हैं। जो बड़े भक्त हैं उनका आदर आतिथ्य करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। जो उनसे निम्न है उन्हें कृपा प्रदान करते हैं और जो उनके समवयीन है उनका आलिंगन करके उनके मित्रता से उनके साथ व्यवहार करते हैं। और अचानक कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मन में एक वृत्तांत याद आता है रथयात्रा के पहले का। उन्होंने रथयात्रा का तो वर्णन कर दिया। रथयात्रा साधारणतया वर्षा के प्रारंभ में होती है, जून जुलाई महीने में, और उसके पूर्व जो है वो वैशाख महीना होता है, वैशाख ज्येष्ठ, और रथयात्रा आषाढ़ महीने में आती है। तो उसके पहले, मतलब जब सनातन गोस्वामी वहां पर जब आए थे उस समय का एक वृत्तांत वो सुनाते हैं। पूर्वे वैशाख मासे सनातन यवे आईला, ज्येष्ठ मासे प्रभुतारे परीक्षा कोरिला। वैशाख मतलब अप्रैल और मई महीना, जिसमें धूप काफी होती है, और जो ज्येष्ठ है वो मई और जून का महीना, जिसमें और अधिक जो है वो उष्मा पाई जाती है। तो कविराज गोस्वामी सुना रहे हैं कि पूर्वे वैशाख मासे सनातन यवे आईला, तो साधारण इस वैशाख महीने में शायद सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए थे और ज्येष्ठ महीने में महाप्रभु ने एक परीक्षा ली थी। क्या थी ये परीक्षा? एक दिन महाप्रभु यमेश्वर टोटा, मतलब यमेश्वर एक उद्यान है, वहां पर गए थे भक्त के पास और वहां पर वो भक्तों से कहे कि जाओ जाके सनातन को बुलाओ, और सनातन को संदेशा भेजा गया और महाप्रभु वहां पर प्रसाद के लिए उन्हें बुलाना चाहते थे। मध्यान्ह का समय था और जैसे ही सनातन को समाचार मिल जाता है महाप्रभु ने बुलाया है, सनातन आनंदित होकर नाचते नाचते निकल पड़ते हैं। और निकल पड़ते हैं कौन से रास्ते में? यमेश्वर जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है सिंहद्वार, जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से होके जाता है, और दूसरा रास्ता है जो समुद्र के तट से होके जाता है। तो सनातन गोस्वामी समुद्र तट वाला रास्ता उसका चयन करते हैं। अभी जो समुद्र तट में जगन्नाथपुरी में गए हुए हैं, समुद्र के तट पर वालू होती है और उस वालू का वो सूरज की वजह से मध्यान्ह का समय है, उसमें बहुत तपती है। और अभी महीना कौन सा वर्णन किया जा रहा है? ज्येष्ठ महीना, मतलब वैशाख के बाद वाला, मतलब इतनी कड़ी धूप और उसमें भी मध्यान्ह का समय, महाप्रभु ने बुलाया है। सनातन गोस्वामी नाचते 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 मानो जा रहे हैं उस वालू का, तपते हुए वालू से, और वो वालू नहीं है, कविराज गोस्वामी कहते हैं मानो वो तपते हुए अग्नि 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 की ज्वाला के ऊपर से मानो जा रहे हैं। उस रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते जाते जैसे ही पैर स्पर्श किया तो उनके पैर में तुरंत फोड़े आ जाते हैं, एक पैर स्पर्श करने के बाद ही। और इतना सारा रास्ता वो नापते नाप कीर्तन करते 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 जाते हैं, सारे पैरों के अंदर जो है वो फोड़े आ जाते हैं, वहां से पस निकलने लगता है और इतनी वेदना हो रही होती होगी, लेकिन सनातन गोस्वामी अनभिज्ञ है, वो उन्हें पता भी नहीं कि इतने छाले मेरे पैर में जो है वो इतने फोड़े आए हुए हैं, क्योंकि इतनी उत्कंठा थी महाप्रभु को देखने की। जाके जाते जाते जब पहुंच जाते हैं, देखते हैं महाप्रभु का भोजन हो गया है, महाप्रभु थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि ये दूर का रास्ता था यमेश्वर टोटा जाने के लिए। यदि आप सनत हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर से निकलते हैं तो बहुत दूर का रास्ता है, उन्हें पहुंचते पहुंचते थोड़ा विलंब हो जाता है और महाप्रभु प्रसाद लेके थोड़ा विश्राम कर रहे होते हैं। वहां पर गोविंद था, महाप्रभु का सेवक, वो सनातन गोस्वामी को स्वागत करता है, उन्हें थोड़ा प्रसाद खिलाता है और सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में जाके बैठ जाते हैं। जब बैठे हैं, महाप्रभु तुरंत जागृत अवस्था में आ जाते हैं और कहते हैं, सनातन आपको आने में विलंब हो गया, कौन से पथ से आए आप? तो महाप्रभु पूछ रहे, कौन से रास्ते से आए? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं समुद्र के पथ से आया हूं महाप्रभु। और जब महाप्रभु सुनते हैं तो महाप्रभु व्याकुल हो जाते हैं, क्या वो तपते हुए वालू से तू आए हैं? तो सनातन कहते हैं कि हाँ महाप्रभु, तो तुम्हारे पैर देखो, देखो कितने कितने फोड़े आए हुए तुम्हारे पैर में, क्या तुम्हें तुम्हें इसकी भी समझ नहीं हुई? तो सनातन कहते हैं कि मुझे तो कुछ दर्द हुआ ही नहीं महाप्रभु, और अभी मुझे पता चल रहा है कि इतने फोड़े मेरे पैर में आए हुए हैं। तो महाप्रभु पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया तूने? सनातन गोस्वामी देखिए क्या उनका भाव था। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो सिंहद्वार है वहां से जाने का मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं है, वहां पर कई सारे पुजारी जगन्नाथ जी के पंडा आते जाते रहते हैं, यदि मैं वहां से आता, हालांकि वो रास्ता शीतल था, उस रास्ते से यदि मैं आता तो उन लोगों को स्पर्श हो जाता मेरा और ये अपराध हो जाता जगन्नाथ जी के प्रति और मेरा सर्वनाश हो जाता। इतनी दीनता सनातन गोस्वामी जता रहे थे। चैतन्य महाप्रभु अंदर से संतोष जताते हैं लेकिन कहते हैं सनातन से, हे सनातन, आप में ब्रह्मांडों को पावन करने की शक्ति है, सारे ब्रह्मांड का आप उद्धार कर सकते हैं आपके स्पर्श के द्वारा, बड़े बड़े देव, बड़े बड़े ऋषि और मुनिगण आपका यदि स्पर्श करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से जो है महाप्रभु सनातन का गुणगान करते हैं, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि मुझे कौन से गुण ने तूने जीत लिया है? तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन हो या साधुर भूषण। भक्त का एक स्वभाव होता है कि वो मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता, मर्यादा का हमेशा पालन करता है, और मर्यादा पालन होए साधुर भूषण, मर्यादा की पालन करना, मर्यादा की सीमाओं में हमेशा रहना, ये एक साधु का भूषण है। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद जी को जब पूछा गया कि आपके भक्तों की पहचान कैसे की जा सकती है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि माई डिवोटीज दे आर परफेक्ट जेंटलमैन, वो एक सभ्य गृहस्थ है, सदग्रस्त होते हैं, सुसंस्कृत तरीके से उनका बर्ताव होता है। ये नहीं कि अभी हम लोग भक्त बन गए हैं, कुछ नियमों की पालन करने की आवश्यकता नहीं है, सारे सिग्नल को हम लोग तोड़ देंगे और सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, हम उच्छृंखल जीवन जी सकते हैं, ऐसा कदापि नहीं। महाप्रभु सनातन से कहते हैं कि मर्यादा पालन है साधुर भूषण, साधु के अलंकार है मर्यादाओं में रहना और नियमों का पालन करना, ये एक साधु के जो है वो आभूषण होते हैं। यदि मर्यादा का लंघन होता है तो लोग उपहास करेंगे और इस संसार में भी और परलोक में भी जो है वो उस व्यक्ति को जो है वो उसकी हानि हो जाएगी। और इस मर्यादा पालन से सनातन तूने मेरे मन को जीत लिया है। तो देखिए महाप्रभु के मन को जीतने का सबसे आसान तरीका क्या है? मर्यादा का पालन करते रहना, सारे नियमों को ठीक से पालन करना, उनका जो है वो उल्लंघन कभी नहीं करना। और ऐसा करके महाप्रभु सनातन को आलिंगन देने के लिए जाते हैं लेकिन सनातन अभी वापस पीछे 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 आ रहा है और पुनः महाप्रभु जोर से जो है वो बलपूर्वक आलिंगन कर लेते हैं और सनातन बिल्कुल दुखी हो जाते हैं कि इस प्रकार से सारा कंडूरस उनके शरीर का महाप्रभु के शरीर में लग जाता है। फिर सनातन वहां से निकल जाते हैं, महाप्रभु भी वहां से चले जाते हैं अपने निवास स्थान पर। दूसरे दिन सनातन गोस्वामी को मिलने के लिए जगदानंद पंडित आ जाते हैं और जगदानंद पंडित बहुत विद्वत अच्छे भक्त थे और जगन्नाथ के बड़े भक्त थे, महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। और जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी के साथ कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कथा तो चलती है, सनातन गोस्वामी अपने मन की व्यथा भी उस कथा के साथ बता देते हैं। कहते हैं कि मैं मन में एक विचार लेके आया था, उस विचार को मैं संपन्न नहीं कर पा रहा हूं। कौन सा विचार था मन में? रथ यात्रा के सामने अपने जीवन को त्याग कर देना। तो मन में मैं विचार लेके आया था, उस विचार को भी नहीं कर पा रहा हूं, जगन्नाथ जी का दर्शन तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ और महाप्रभु यहाँ से बलपूर्वक मेरा आलिंगन करते हैं, सारा कंडूरस उनके शरीर में लग जाता है, मैं ये सहन नहीं कर पाता, ये अपराध है मेरी ओर से, मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। तो एक भक्त को चाहिए कि हमेशा सलाह मशवरा करे, जब उनके जीवन में कभी कुछ संकट आए तो हमेशा सलाह मशवरा करनी चाहिए। सनातन गोस्वामी सलाह मशवरा करे जगदानंद पंडित से, जगदानंद पंडित कहते हैं कि आपके लिए वृंदावन स्थान सर्वश्रेष्ठ है, और वैसे भी आप दोनों भाई रूप और सनातन को महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि वृंदावन में जाकर रहो और कई सारी आज्ञाएं दी है, लुप्त तीर्थ का उद्घाटन करो, प्रकाशित करो, भक्ति शास्त्रों का प्रचार करो, तो आप वृंदावन में चले जाइए, वहां पे क्यों नहीं जाते, आप यहां पे क्यों रुके हो, फिर महाप्रभु ने पहले ही आज्ञा देकर रखी है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अच्छा हो गया, आपने स्मरण कराया, बहुत अच्छा आपने हमें उपदेश दिया है, अच्छा परामर्श दिया है, मैं जरूर वृंदावन चला जाऊंगा। और दूसरे दिन जब महाप्रभु उपल भोग दर्शन करके हरिदास की कुटीर में आ जाते हैं हरिदास और सनातन को मिलने के लिए, तब महाप्रभु पुनः जोर जबरदस्ती से आलिंगन करते हैं सनातन को और हरिदास ठाकुर को भी। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से बातचीत करना प्रारंभ कर देते हैं कि मैं यहां मेरे लाभ के लिए आया था, लेकिन सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है? एक तो मैं कुछ सेवा नहीं कर रहा हूं, सेवा के अयोग्य मेरा शरीर नहीं है, कितने सारे अपराध मेरे से यहां पे हो रहे हैं, मेरे शरीर से यह कंडू रस निकलता है, आप मुझे जोर जबरदस्ती से आलिंगन करते हैं, मैं नहीं बोलू तो भी यह अपराध हो जाएगा, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, मैं अभी सोच रहा हूं वृंदावन के लिए निकल पड़ूं, मैं जाता हूं वृंदावन, आपकी अनुमति चाहिए महाप्रभु। और मैंने जगदानंद पंडित से भी परामर्श किया है, विचार विमर्श किया है, उन्होंने भी यही सलाह दी है कि आप वृंदावन जाइए। महाप्रभु क्रुद्ध हो जाते हैं, जग्गा, जगदानंद से तूने परामर्श किया, कौन होता है वो आपको परामर्श देने वाला, कालिकार बटुया जग्गा ऐछे गर्वी हैला तोमा सबारे ह उपदेश करीते लागिला, कौन होता है जग्गा, वो कल का दो दिन का छोकरा आपको उपदेश देगा, अरे तोमा सबारे ह उपदेश करीते लागिला, आपके जैसे दिग्गज पंडित को वो उपदेश दे रहा है, व्यवहारे परमार्थे तुम्ही तार गुरु तुल्य, तुम्हारे उपदेश ना जाने आपन मूल्य, आप तो व्यवहार और परमार्थ दोनों में उसके गुरु तुल्य हो, आपको उपदेश दे उसकी ये मजाल, बिल्कुल ठीक नहीं किया उसने, आप तो मेरे भी सलाहकार है सनातन, आप मुझे उपदेश दे सकते हैं, ऐसी दुष्टता जग्गा की। सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और बोलते हैं, आज मैं समझ गया महाप्रभु, आप जगदानंद को गुस्सा जता रहे हैं, मतलब आपका उसके प्रति स्नेह और प्रेम है, और आप मेरी स्तुति करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मतलब आपने अभी तक मुझे अपना अंतरंग पार्षद स्वीकार नहीं किया हुआ है, मैं जान गया मैं आज, जगदानंदे पियाओ आत्मीयता सुधारस, मोरे पियाओ गौरव स्तुति निम्न निशिंदारस, जगदानंदे पियाओ आत्मीयता सुधारस, आपने उसे अपना स्वकीय मान लिया है, इसलिए आप उसकी निंदा कर रहे हैं, और आप उसे जो है वो आत्मीयता का अमृतपान करा रहे हैं, और मुझे गौरव स्तुति निम्ब निशिंदा रस, और आप निषिद्ध नीम का कड़वा रस मुझे पिला रहे मेरी स्तुति करके। देखिए सनातन का भाव देखिए, आप क्या कह रहे सनातन, आप उनको निंदा कर रहे हैं मतलब आप उनको अमृतपान करा रहे हैं, और मेरी स्तुति कर रहे हैं मतलब मुझे आप कड़वा रस पिला रहे हैं, तो मतलब क्या है कि जब कोई हमारे स्तुति करता है तो वो निम्बे कड़वे जूस के समान हमें लगनी चाहिए, तो सनातन को वैसा ही लग रहा था कि मुझे कड़वा रस पान करा रहे हैं और उसे जो है वो आपने आपका निजी पार्षद मान लिया है। महाप्रभु फिर थोड़ा लज्जित हो जाते हैं और महाप्रभु कहते हैं, जगदानंद प्रिय आमार नहे तोमा हैते मर्यादा लंगन आमी नापारो सहिते, जगदानंद मुझे प्रिय तो है लेकिन आपसे अधिक प्रिय नहीं है, आप सबसे अधिक प्रिय हो, क्योंकि मैं मर्यादा का लंघन कभी सहन नहीं कर पाता, वो आपसे जूनियर है, और जूनियर यदि सीनियर को उपदेश दे ये मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगा, कहा तुम्ही प्रामाणिक शास्त्रीय प्रवीण कहा जग्गा कालिकार बटिया नवीन, आप कहा जो है वो इतने प्रामाणिक शास्त्र के प्रवीण प्रगाढ़ पंडित हो, और कहा वो जगदानंद दो दिन का नया छोकरा, आप तो मुझे भी दे सकते हैं उपदेश, और आपने मुझे कई बार ऐसी सलाह दी भी है और मैंने भी उसका पालन किया हुआ है, ऐसा महाप्रभु कहते हैं कि आपने मुझे भी उपदेश दिया हुआ है, याद है मैं राम के लिए आया था, आपसे मिला था, आपने मुझे सलाह दी थी कि आप वृंदावन इतने सारे लोगों के साथ मत जाइए, मैंने आपकी सलाह का भी आदर किया था, तो आप मुझे भी सलाह दे सकते हैं, कौन होता है ये जग्गा जो आपको उपदेश दे, इसलिए वो मुझे सहन नहीं हो पाया, इसलिए मैं उसकी भर्त्सना कर रहा था। और मैं तुम्हारी जो प्रशंसा करता हूं सनातन, ये बाहरी प्रशंसा नहीं है, झूठ मूठ की जो दिखावटी है, तुम्हारे अंदर इतने गुण है, तुम गुणों के खान हो और उन गुणों का बखान मैं करता हूं, ये आप उसे जो है वो आप इसे बिल्कुल बाहरी स्तुति मत मानना, ये मेरे अंदर का मनोभाव है, आपके अंदर के गुण है उन गुणों का मैं बखान करता हूं, तुम्हारा जो शरीर तुम उसे बिभत्स मान रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मुझे अमृत के समान तुल्य हो रहा है, तुम्हारा जो शरीर है वो बिल्कुल प्राकृत देह नहीं है, तुम्हारा शरीर क्योंकि तुमने कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण किया हुआ है इसलिए ये तुम्हारा शरीर अभी अप्राकृतिक है, इस भौतिक संसार का नहीं, अभी यह दिव्य बन गया है, और किसी को अच्छा मानना किसी को बुरा मानना यह तो द्वैत भाव हो गया, अच्छा है बुरा है यह तो केवल मन का कल्पित धर्म है, यह तो केवल भ्रम है। भगवद गीता बताती है हमें कि किस प्रकार से समान दृष्टि सब जगह रखनी चाहिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैवाश्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, पांचवे अध्याय के 18वें श्लोक में गीता बताती है कि पंडिता पंडित व्यक्ति जो है वो समान दृष्टि रखता है, गाय को कुत्ते को चंडाल को ब्राह्मण को हाथी को सबको एक दृष्टिकोण से देखता है, और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो अभिजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी सम लोष्ट्र अश्मकांचनः, जो योगी होता है वो इस प्रकार से कोई पत्थर हो या कोई सोना हो इसको दोनों को एक दृष्टिकोण से देखता है, और मैं तो सन्यासी हूं अमित सन्यासी अमर समदृष्टि धर्म चंदन पंकेते अमर ज्ञान हो या सम, मैं तो सन्यासी हूं मतलब मैं भी योगी से भी ऊपर यदि मुझे होना है तो मुझे भी समान दृष्टि से देखना चाहिए, तो आपका भौतिक शरीर और आपके दिव्य शरीर इसमें यदि मैं भेद करूं, आपको यदि कुछ रोग हो गया है तो इस प्रकार से मैं अच्छा और बुरा ये भेद करूं तो मेरे सन्यास धर्म का नाश हो जाएगा सनातन, इसलिए मैं इसे भेद नहीं कर रहा हूं और इसलिए मैं तुमसे घृणा नहीं कर रहा हूं, शायद कृष्ण ने ही तुम्हें ये रोग दिया है, यदि मैं उस आपकी घृणा करूं तो मुझे अपराध लग जाएगा। हरिदास ठाकुर को यह बात महाप्रभु की कुछ हजम नहीं हुई, हरिदास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ये बाह्य औपचारित वाली औपचारिकता वाली बात आप मत कीजिए कि ये आप समान देख रहे हैं, गीता के सिद्धांत हमें सुना रहे हैं, ये कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, आप दीन वत्सल हो, आप कृपालु हो और हम जैसे दीन हीन बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे हो यह सत्य है, ये मैं जानता हूं, आप भेद क्यों नहीं करते, क्योंकि आप कृपा के अवतार है और हमारे ऊपर आप कृपा बरसा रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं हे रूप ऐसा, हे सनातन, हे हरिदास, सुनो गौर से मेरे मन की बात, सुनो मेरी मन की बात, सुनो आप क्या है और क्यों मैं जो है वो आपको आलिंगन करता हूं और आपको दूर नहीं कर पाता, तुम्हारे लाल्य अपना के लालक अभिमान, लालक केर लाल्य न है दोष परिज्ञान, तुम्हारे लाल्य, लाल्य मतलब आप दोनों मेरे बच्चे के समान हो और मेरे अंदर है लालक अभिमान, मैं अपने आप को आपकी माता या आपकी पिता मैं मान रहा हूं, और जब पिता या माता अपने बच्चे के कोई दोष देखते हैं तो वो कभी उन दोषों की तरफ जो है वो ध्यान नहीं देते, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं प्रेम के कारण, तुमा सबारे करो मोई बालक अभिमान, आप सबके प्रति जो है मैं बालक अभिमान रखता हूँ, माता यही छे बालक एर अमेध्य लागे गाय घृणा नहीं जन्मे आर महासुख पाए, जिस प्रकार से जो माता होती है और उसका छोटा शिशु यदि है और छोटा शिशु जो यदि कोई अमेध्य लागे गाय उसकी वो छोटा शिशु यदि अपनी माँ के साड़ी के ऊपर यदि विष्ठा विसर्जित कर दे मलमूत्र त्याग कर दे तो माँ उस बच्चे को लेके फेंक नहीं देती है दूर कि जा कमीना किस प्रकार से मुझे गंदा कर रहा है, माँ कभी उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखती, माँ को उसके विपरीत वो अच्छा लगता है, घृणा नहीं जन्मे और महासुख पाए, ये महान सुख की प्राप्ति होती है। महाप्रभु कहते हैं कि वो जो मलमूत्र है वो माता को तो चंदन के समान लगता है, तो इस प्रकार से जो है वो माता का प्रेम होता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु, देखिए महाप्रभु का भाव, महाप्रभु कह रहे हैं, ये भी अंतरंग भाव बता रहे हैं महाप्रभु, मैं आप दोनों को अपना पुत्र मान रहा हूं, और यदि पुत्र कोई पुत्र इस प्रकार से कुछ जो गलत उसके शरीर में लग जाता है अमेध्य, तो उसकी घृणा नहीं की जाती। यह है महाप्रभु का मां रूपी भाव, जो अंतरंग सबसे अंतरंग भाव है अपने पुत्र के प्रति वो जता रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि सनातन तुम्हारे जो शरीर में जो क्लेश था, ये जो कंडोरस है, वो मुझे कभी घृणास्पद नहीं लगा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारा जो है वो आलिंगन करता हूं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु आप दयामय और आप संपूर्ण जगत के ईश्वर है, आपका हृदय इतना गंभीर है, हम कभी भी आपके हृदय को समझ नहीं पा सकते। आपने जब दक्षिण भारत में गए थे, आपने वासुदेव का आलिंगन किया था और वासुदेव का सारा कुष्ठ जो है वो ठीक हो गया था। मध्य लीला के अध्याय 7 में हमने उसकी चर्चा की है, वासुदेव का उद्धार, कि किस प्रकार से उसके शरीर में भी जो है वो रोग लगा हुआ था, कीड़े पड़े हुए थे, और महाप्रभु ने उसे आलिंगन दिया था। नष्ट कुष्टम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकार, महाप्रभु ने क्या किया था, उसे आलिंगन करके नष्ट कुष्टम उसका कुष्ठ रोग दूर कर दिया था, रूप पुष्टम उसके रूप को सुंदर कर दिया था, और भक्ति तुष्टम उसके भक्ति की वृद्धि की थी। इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा उस वासुदेव को मिली थी। तो हरिदास ठाकुर उसका स्मरण करा रहे हैं, लेकिन हरिदास ठाकुर के मन में क्या चल रहा है उसका याद करा के महाप्रभु को बता रहे थे, मानो कि आपने तो उस वासुदेव को आलिंगन करके एक बार आलिंगन किया, उसका उद्धार हो गया था, आप सनातन का बार बार आलिंगन किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। शायद वो कुछ इंगित करा रहे थे। अभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कबुनाय अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। बहुत सुंदर शिक्षा महाप्रभु दे रहे सनातन के द्वारा। प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभी नए, वैष्णव का जो शरीर होता है वो कभी भी भौतिक प्राकृतिक नहीं होता है। अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय, जो भक्त का शरीर है वो सच्चिदानंदमय बन जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा काल के समय कोई भी भक्त जब गुरु को आत्मसमर्पण करता है वो कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पित हो जाता है, और सेई काले उसी समय कृष्ण तारे करे आत्मसम, कृष्ण उसे अपने समान बना लेते हैं। इसलिए हमें किसी भी वैष्णव का जो शरीर है वो कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दीक्षा जब जो उसने ली है उसका शरीर उसी समय जो है वो कृष्ण के समान बन जाता है, तो कृष्ण तुल्य एक वैष्णव का शरीर हो जाता है। इसलिए जो वैष्णव का शरीर हमने कभी भी जो है वो प्राकृत है, ये वैष्णव बूढ़ा हो रहा है, ये वैष्णव को इस प्रकार से रोग जड़ रहा है, ऐसा कभी भी जो है वो नहीं सोचना चाहिए। इसे आचार्य नरक बुद्धि कहते हैं, ये नारकीय बुद्धि है, इस बुद्धि का हमेशा त्याग करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि ये अप्राकृत देह जो 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 देह होता है वैष्णव का, ये प्राकृत कभी भी नहीं होता है, ये सच्चिदानंद, और इसे अप्राकृत मानना चाहिए। और शायद कृष्ण ने ही सनातन के शरीर में यह कंडूरस और छाले दिए होंगे मेरी परीक्षा के लिए, कि देखते हैं ये श्री कृष्ण चैतन्य क्या करता है जब सनातन आएगा। यदि मैं इसका आलिंगन नहीं करता तो मेरे अंदर घृणा उत्पन्न यदि हो जाती, और मैं आलिंगन नहीं करता तो मैं कृष्ण के परीक्षा में फेल हो जाता और वो मुझे अपराध लग जाता एक वैष्णव का। परिषद देह यही ना हो यद दुर्गंध, प्रथम दिवस पाइलो चतुष समगंध। ये भगवान के पार्षद का देह मानना चाहिए, ना हो ये दुर्गंध, ये जो कंडोरस था इसका बिल्कुल दुर्गंध तो छोड़ दो, पहले दिन से मैं चतुष्सम गंध, चार चीजों को मिश्रित करने के बाद जो गंध आती है, चंदन कर्पूर अगुरु और कस्तूरी, इनकी मिश्रित होकर जो सुगंध आती है उस सुगंध को मैं पहले दिन से आस्वादन कर रहा था। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शायद महाप्रभु ने जो पहला आलिंगन दिया था उस आलिंगन के पश्चात शायद सनातन का शरीर सुगंधी हुआ रहेगा। चैतन्य महाप्रभु सनातन से कहते हैं कि आप बिल्कुल दुखी मत हो जाना, एक साल तक आप यहां पर रुकिए और रथ यात्रा वगैरह देखने के पश्चात, डोल यात्रा वगैरह सब होने के बाद आप वृंदावन जाइए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी 10 महीने रुके थे जगन्नाथपुरी में, और सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कह रहे हैं कि आप 1 साल रुकिए। एतबली पुनः तारे कैला आलिंगन, ऐसा बोल के पुनः आलिंगन देते हैं, लेकिन इस बार आलिंगन देते समय महाप्रभु ने शायद हरिदास ठाकुर की मन की बात सोच ली होंगी। एतबली पुनः तारे कैला आलिंगन, कंडुगेल अंग हैल सुवर्णे रसम, सारा कंडु रोग जो भी उनके शरीर में छाले फोड़े जो कुछ था सब कुछ चला जाता है, और सुवर्ण के समान कांतिमान उज्जवल देह सनातन गोस्वामी का हो जाता है। हरिदास ठाकुर वहां पर उपस्थित भक्त सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु शायद झारखंड से आपने सनातन को लाया, इसके शरीर में रोग लगवाया, आपकी कृपा अपरंपार है, कोई समझ नहीं पाता क्या परीक्षा लेते हैं और क्या गुण आप अपने भक्तों का प्रदर्शित कराना चाहते हैं, हमारे तो यह समझ से परे है। ऐ मत सनातन रहे प्रभु स्थाने, कृष्ण चैतन्य गुण कथा हरिदास सने। इस प्रकार से जो है वो सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर के साथ जगन्नाथपुरी में रहे और चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करते हुए उन्होंने समय बिताया। ये काले विदाय होइला प्रभुर चरणे, दुई जनर विच्छेद दशा ना पाय वर्णने। इस प्रकार से महाप्रभु सनातन से कितना प्रेम करते थे ये हमने देखा, अपना बच्चा मानते थे और जो है सनातन की ये महाप्रभु से आखिरी भेंट थी। हम पहले अध्याय में देखे रूप गोस्वामी वहां से चले गए हैं और अभी सनातन गोस्वामी यहां से महाप्रभु को विदा दे रहे, डोल यात्रा आदि सब महोत्सव देख लिए और विदाई हो रही है। सनातन गोस्वामी महाप्रभु से अभी जाने वाले हैं और पता नहीं वापस कब मिलेंगे, इस भाव से जा रहे हैं। महाप्रभु का सनातन के प्रति इतना प्रेम और इन दो भक्तों का विच्छेद हो रहा है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मुझसे तो ये असंभव है इस विच्छेद का वर्णन कर पाना, मैं कदापि नहीं कर पाऊंगा क्या विच्छेद हुआ होगा वो इतना प्रेममय भक्तों का। महाप्रभु से विदा ली सनातन गोस्वामी ने, बलभद्र भट्टाचार्य से मिले, जिस जिस स्थान में महाप्रभु गए थे उन्होंने कोई लीलाएं झारखंड जंगल में की थी सारा टिप्पणी कर लिया सनातन गोस्वामी ने, सब कुछ बलभद्र भट्ट से लिखवा लिया क्या क्या लीला कहाँ कहाँ हुई थी, और एग्जैक्टली उसी पथ से उसी मार्ग से जहां जहां महाप्रभु ने लीलाएं की थी उसी स्थानों से होके सनातन गोस्वामी वृंदावन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, गौर आमार ये सब स्थाने करिल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हिरीबो आमी प्रणयी भक्त संगे। जिस जिस स्थान पर महाप्रभु गए हुए हैं उस स्थान पर मैं जाऊंगा भक्तों के साथ में और वहां की चरण धूली अपने माथे पे लगाऊंगा, ये भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं। जहां जहां महाप्रभु गए हुए वहां वहां उस भाव में हमने जाना चाहिए। और हमारे नासिक के भक्तों का सौभाग्य, मध्य लीला के अध्याय 9 में हमने चर्चा किया है कि महाप्रभु नासिक भी आए थे, नासिक में रुके थे, इस धरती को पावन पवित्र किया था और यहाँ से त्र्यंबकेश्वर गए थे, ब्रह्मगिरी का दर्शन किया था, कालाराम मंदिर रामकुंड में स्नान किया था, ये सब लीला यहाँ पर की थी। तो हमें भी भक्तों के साथ जो है वो वहां पर जाना चाहिए। और प्रेमावेश में होकर जो है वो सनातन गोस्वामी इस प्रकार से वृंदावन पहुंचते हैं और गौड़ देश से रूप गोस्वामी अभी वृंदावन के लिए जाने वाले थे, लेकिन रूप गोस्वामी गौड़ देश में थोड़े अधिक समय के लिए रुकते हैं। हमने देखा था मध्य लीला में अध्याय 18 और 19 इसमें कि किस प्रकार से जो रूप गोस्वामी थे उन्होंने जो धन अर्जित किया था उसको उन्होंने किस प्रकार से विभाजित किया था, तो उसका विभाजन थोड़ा भी बाकी था, कुटुंब का उदर निर्वाह और उसके लिए जो विभाजन जो था वो बाकी था, वो सब करके रूप गोस्वामी आगे चल के सनातन गोस्वामी को वृंदावन में जाके मिलेंगे। दुई भाई मिली वृंदावने वास कैला, प्रभु रैया आज्ञा दुहे सब निवारिला। इस प्रकार से दोनों भाई रूप और सनातन वृंदावन में मिलते हैं और महाप्रभु ने जो जो आज्ञाएं दी थी उसका यथारूप पालन करते हैं। नाना शास्त्र आनी लुप्त तीर्थ उद्धारिला, वृंदावने कृष्ण सेवा प्रकाश कोरिला। अनेक शास्त्र उन्होंने एकत्रित किए, लुप्त तीर्थों का उद्धार किया और वृंदावन में कृष्ण की सेवा उसका प्रकाश किया। हमें पता है रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद मंदिर की स्थापना की और सनातन गोस्वामी ने राधा मदन गोपाल या मदन मोहन मंदिर की स्थापना की। और कविराज गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं संधि पाकर कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे। सबसे पहला प्रसिद्ध ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने लिखा बृहत भागवतामृत, जिसमें भक्त क्या होता है, भक्ति क्या होती है और कृष्ण तत्व क्या है, इसकी सबसे अच्छी रचना वहां पर की गई है। और उसके पश्चात उन्होंने ग्रंथ लिखा है हरि भक्ति विलास, जिसमें एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, एक वैष्णव का कर्तव्य धर्म क्या है, इसकी चर्चा की है। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है दशम टिप्पणी, श्रीमद भागवत के दशम स्कंद के ऊपर टीका और कृष्ण लीलाओं का रसपूर्ण आस्वादन और प्रकटीकरण वहां पर सनातन गोस्वामी ने किया हुआ है। और उसी प्रकार से रूप गोस्वामी ने भी कई सारे ग्रंथों की रचना की, उसमें सर्वप्रथम है भक्ति रसामृत सिंधु, जिस ग्रंथ में उन्होंने कृष्ण भक्ति का रस और वो तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, इन सारे तत्वों का निरूपण उन्होंने वहां पर किया है। उज्जवल नीलमणि, उसमें उन्होंने राधा और कृष्ण इनके अंतरंग लीलाओं का वर्णन उसमें और उसका रस प्रकटन किया हुआ है। और उन्होंने जो दो नाटक लिखे, हमने अंत्य लीला के पहले अध्याय में भी उसकी चर्चा की थी, ललित माधव और विदग्ध माधव, इन नाटकों की रचना की है। और दान के लिए कौमुदी, ऐसे कई सारे ग्रंथ लिखे हैं रूप गोस्वामी ने, ऐसा बताया जाता है कुल मिलाकर 100,000 श्लोकों की रचना उन्होंने स्वयं की है। तो 100,000 श्लोक रूप गोस्वामी द्वारा जो है वो रचित किए गए हैं। हम सनातन गोस्वामी उनके भाई की चर्चा कर चुके हैं, जो अनुपम, जो राम भक्त था, अभी अभी हमने चर्चा की है, जो अनुपम या श्रीवल्लभ जो थे उनके ही एक पुत्र थे जो बाद में बनते हैं श्री जीव गोस्वामी। तो ये जीव गोस्वामी जो है वो रूप सनातन जीव गोस्वामी के चाचा बन जाते हैं, अंकल बन जाते हैं। तो ये जीव गोस्वामी भी आगे चल के रूप और सनातन को जाके मिलेंगे और वो भी कई सारे ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। इस धरातल पर जीव गोस्वामी जैसा विद्वत और श्रेष्ठ भक्त अभी तक नहीं हुए है, ऐसा बताया जाता है। जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में 400,000 श्लोकों की रचना की है और उसमें उनमें से प्रमुख ग्रंथ कई सारे हैं, भागवत संदर्भ, षड संदर्भ उन्होंने लिखा हुआ है, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, तत्व संदर्भ, ऐसे 6 संदर्भों की उन्होंने चर्चा की है। भागवत के सिद्धांतों का स्थापन किया हुआ है और व्रज लीलाओं के आधार पर गोपाल चंपू, ऐसे कई सारे ग्रंथों का जो है उन्होंने लिखान किया हुआ है। बंगाल में जीव गोस्वामी थे, नित्यानंद प्रभु से आज्ञा पाकर जीव गोस्वामी वृंदावन में जाते हैं, रूप सनातन से वहां पर जो है वो मिलते हैं। और इस प्रकार से कविराज गोस्वामी उनके गुरु का स्मरण करते हुए कहते हैं, ऐ तीन गुरु आमार रघुनाथ दास, यहां सबार चरण वंदो यार मुई दास। ये रूप सनातन और जीव के बारे में चर्चा की और उन्हें और एक की याद आती है, रघुनाथ दास। ये तीन गुरु आमार, ये तो मेरे गुरु है और एक साथ साथ है उनके रघुनाथ दास, मतलब 4 गुरु हो गए। यहां सवार चरण वंदो यार मुई दास, और मैं इनका जो है वो दास हूं। कई भक्तों को ये प्रश्न भी आता है कि कविराज गोस्वामी के वास्तविक गुरु कौन है, तो कविराज गोस्वामी ने दीक्षा किन से ली, ये तो बहुत वैष्णव में अभी भी संभ्रम है। कुछ लोग बताते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी से ली है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसका खंडन करते हैं। तो किससे ली, लेकिन हमारी जो शिक्षा परंपरा है तो शिक्षा ए 6 गोस्वामी करू चरण वंदन, ये भी लिखते हो आदिलीला के पहले अध्याय में, तो 6 गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये जो है उनके शिक्षा गुरु के समान है, ऐसा हमने समझ लेना चाहिए। यही तक कहलो पुनः सनातन संगमे प्रभुर आशय जानी यहार श्रवणे। इस प्रकार से मैंने सनातन गोस्वामी का महाप्रभु के साथ पुनः मिलन इसका वर्णन किया हुआ है और जो इसे श्रवण करता है उसे क्या मिलता है, महाप्रभु आशय जानी, महाप्रभु के हृदय का क्या आशय है वो उसे समझ में आता है कि किस प्रकार से महाप्रभु मर्यादा पालन उसको महत्व देते है। और सनातन गोस्वामी का मन जान के उन्होंने साधन भक्ति कही कि किस प्रकार से श्रवण कीर्तन की विधि करो, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से महाप्रभु का भाव हमें समझ सकता है जब हम सनातन गोस्वामी का मिलन जब पढ़ते हैं। चैतन्य चरित्र यही इक्षुदंड सम चरवण कोरिते होय रस आस्वादन। इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत जो है वो कितना मधुर है और इक्षुदंड गन्ने के समान है और चरवण करते हुए रस आस्वादन, जितना हम अधिक उसका चरवण करते हैं उतना हमें जो है वो रस का आस्वादन मिलेगा। इसलिए आप चैतन्य चरितामृत रूपी जो है वो गन्ने का रस आस्वादन करते रहिए करते रहिए करते रहिए और हमेशा अतृप्त रहिए। और अभी महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान अलग अलग मार्गों से किया करते थे, तो कल हम चर्चा करेंगे, उन्हें रामानंद राय का गुणगान कराना था लेकिन कुछ अलग ही तरीका उन्होंने अपनाया रामानंद राय के गुणगान करने के लिए। क्या वो तरीका है उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे कल के सत्र में, ठीक शाम को 5:30 बजे। लेकिन कल आपको 4 बजे और एक कार्य करना है, जो भक्त चैतन्य चरितामृत कंटेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मॉक टेस्ट का आयोजन कल किया हुआ है। कल अक्षय तृतीया का भी दिन है, अच्छा मुहूर्त है, आप अच्छे से पढ़ाई करके आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। इससे ये प्रणाली कैसे चलती है और आपका कितना अभ्यास हो गया है आदि लीला का, ये भी हमें जो है वह आपको भी समझ में आएगा और हमें भी समझ में आएगा। तो 4 बजे आप ये परीक्षा जरूर दीजिए, उसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग टेक्नोलॉजी से ज्यादा अवगत नहीं है, आप यदि व्हाट्सएप भी यूज करते हैं तो भी चलेगा। आपको ये चैतन्य सीसीसी ग्रुप है उसके ऊपर ये लिंक भेजी जाएगी, उस लिंक को केवल आपको क्लिक करना है, अचानक आपका जो भी ब्राउजर है वो खुल जाएगा और उस ब्राउजर में वो प्रश्न पत्रिका आपको दिखाई देगी, हिंदी में और अंग्रेजी दोनों साथ साथ। तो आपको केवल वो 3-4 इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेना है, अपना नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना है और डाल के फिर आपको केवल 20 प्रश्न है, 20 मिनट तक के लिए जो है वो जारी रहेगा। हमने नए भक्तों को भी ये परीक्षा देने के लिए पहले ही कहा है, उनकी 10 मिनट में भी ये परीक्षा हो गई है। तो इसलिए आप समय की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, 1 मिनट 1 प्रश्न के लिए बहुत हो जाता है। तो 20 मिनट में 20 प्रश्न आपको देने हैं और कल आप देंगे, और शायद से हमारा जब 5:30 बजे का सत्र शुरू हो जाएगा उससे पहले आपको आपका रिजल्ट भी जो है वो मिल जाएगा। तो आपको ऑल द बेस्ट इस मॉक टेस्ट के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। और आज का प्रश्न हमारा था कि कौन है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अंग है, अध्याय 3 है ये आदि लीला का। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अंग थे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, तो ये है सी यहाँ का सही जवाब। तो जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, लेकिन आपने यदि अध्याय 3 ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ये 2 अंग महाप्रभु के समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।